नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉ एंड्रू होलनेस के साथ वार्ता की। कहा, भारत जैव ईंधन, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों में जमैका के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 44% से अधिक मतदान दर्ज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। इसराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले शुरू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। कानपुर क्रिकेट टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। और पेरू में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जमैका ने आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉ एंड्रू होलनेस के बीच नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि डॉ होलनेस अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए हैं और भारत उनकी यात्रा को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि भारत और जमैका के संबंध साझा इतिहास, लोकतांत्रिक मूल्यों और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।
भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं, कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योगों, जैव ईंधन, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत जमैका की सेना के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की दिशा में भी आगे कदम उठाएगा। संगठित अपराध, मादक पदार्थ तस्करी और आतंकवाद के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये साझा चुनौती है और दोनों पक्षों ने इनका मिलकर मुकाबला करने पर सहमति जताई है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत तथा जमैका का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार जरूरी है।
आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। भारत और जमैका एकमत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारत और जमैका के बीच भले ही विशाल समुद्र हो, लेकिन हमारे लोग, हमारी संस्कृति और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं। जमैका के प्रधानमंत्री ने कहा कि जमैका ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को आजादी के बाद से ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने करीब 2 सदी पहले जमैका में दस्तक दी थी और उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में जमैका के विकास में योगदान दिया है। इससे पहले जमैका के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ होलनेस भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि गरीबों और छोटे व्यवसायियों के लिए बैंक से ऋण लेना अब आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि ये जनधन योजना के कारण संभव हो सका है। उन्होंने आज ईटानगर में रन आउटरीच कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि रन आउटरीच कार्यक्रम सरकार को कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को लाभ पहुंचाने की समीक्षा करने योग्य बनाता है।
पीएम मुद्रा हो, स्वनिधि हो, आप कुछ भी कागज या सोने रखने का, गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। बिना सिक्योरिटी आपको लोन मिलता है आपके बिजनेस आगे लेके जाने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है, स्टैंड अप लोन है, जिसमें हर ब्रांच में से उन इलाके में रहने वाले महिला हो, SC ST लोग हो, उनको भी लोन देने का प्रावधान है। ऐसे में 17 स्कीम से जो प्रधानमंत्री जी ले आए, जिसके द्वारा जनता का उनके हाथ में थोड़ा पैसा मिले, बैंकिंग सुविधा मिले और उनका बिजनेस आगे लेके जाना।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दिन में 1 बजे तक 44% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 7 जिलों की सभी 40 विधानसभा सीटों के 5060 केंद्रों पर सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदान वाले जिलों में जम्मू क्षेत्र के जम्मू, कठुआ और सांबा तथा कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपोरा जिले शामिल हैं। आइए मतदान की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने जम्मू संवाददाता गुलशन रैना से। गुलशन, मतदान कैसा चल रहा है?
जी कनक, अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आए हैं 1 बजे तक
जी,
उसमें 44.8% मतदान जो है वो हो चुका है
जी।
जम्मू संभाग में 24 सीटों पे और कश्मीर में 16 सीटों पे जो है ये मतदान हो रहा है। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें सबसे अधिक मतदान अब तक रिकॉर्ड किया गया है, 53.21%। और अगर हम बात करें कम मतदान की, सबसे कम जो है अभी तक जम्मू वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उस पर 35% मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है।
गुलशन, अंतिम चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं?
जी अगर हम प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो हमारे पास कुल मिला के 17 पूर्व मंत्री, 8 पूर्व MLA जो हैं वो इस चुनावी जंग में हैं। अब प्रमुख अगर हम बात करें तो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के नेता तारा चंद जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह भाजपा के पूर्व मंत्री जो श्यामलाल शर्मा जो हैं वो जम्मू नॉर्थ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा जो हैं वो ये भी पूर्व मंत्री हैं, जम्मू नॉर्थ से ये लड़ रहे हैं।
जानकारी के लिए धन्यवाद गुलशन। हरियाणा में विधानसभा के 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद के नजदीक पलवल जिले के गदपुरी टोल प्लाजा पर एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली में फरीदाबाद और पलवल के वरिष्ठ भाजपा नेता भाग लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 3 अक्टूबर को संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी करेगी। रांची में संवाददाताओं से बात करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि पार्टी का पूर्ण घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा।
झारखंड का विकास के लिए हम कितना प्रतिबद्ध है, 3 तारीख को हम 5 बिंदु लेके आऊंगा। उसका बाद झारखंड राज्य बने, 25 साल हुए हैं, हम 25 प्रॉमिस लेके आऊंगा। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल हुआ है, ये 150 साल में हम 150 कमिटमेंट लेके आएगा। तो टोटल मिला के घोषणा पत्र तक जाने में हमारा समय लेगा। 3 तारीख को 5 प्रॉमिस, उसका तुरंत बाद 25, फाइनली फुल घोषणा पत्र।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है लेकिन सामान्य नहीं। नई दिल्ली में आज चाणक्य रक्षा संवाद पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारत मई 2020 में सैन्य गतिरोध शुरू होने से पहले अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करना चाहता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जब तक पहले की स्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति संवेदनशील रहेगी। भारत किसी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज पश्चिम बंगाल में 12 स्थानों पर तलाशी और पूछताछ कर रही है। एजेंसी राज्य में कुछ व्यक्तियों से जुड़े संदिग्ध माओवादी संबंधों के मामले में नदिया, पश्चिम बर्धमान, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों और कोलकाता में छापेमारी कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला शुरू किए जाने से तनाव बढ़ गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने उत्तरी इजराइल के निवासियों पर तत्काल खतरों का हवाला देते हुए सीमा के निकट हिजबुल्ला के ठिकानों पर सीमित और लक्षित हमले शुरू किए हैं। एक सुनियोजित रणनीति के अनुसार इसराइल के ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो अभियान के तहत इन हमलों की स्वीकृति राजनीतिक नेताओं ने दी है। नेपाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भूस्खलन और बाढ़ में मरने वाले सैकड़ों लोगों की याद में 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।
नेपाल में हुई 3 दिन लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है। नेपाल के विभिन्न इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। प्रधानमंत्री के नेपाल वापसी के तुरंत बाद हुई कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्रालय ने 100 करोड़ आपदा राहत कोष में तुरंत उपलब्ध कराया है। सभी परिषद के सदस्यों ने अपनी 1 माह की तनख्वाह राहत कोष को भेंट की है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
क्रिकेट में भारत ने कानपुर में दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। मैच के 5वें दिन भारत ने बांग्लादेश को दूसरी पारी में 146 रन पर समेट दिया। इसके बाद 3 विकेट पर 95 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं द हिंदू अखबार में खेल विशेषज्ञ राकेश राव से। राकेश, 3 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे टेस्ट मैच भारत के पक्ष में आ गया?
देखिए, जिस अंदाज में भारत ने बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी तो खैर बेहतरीन की है कि है चारों इनिंग्स में इस पूरे सीरीज के, लेकिन फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, मतलब जितने रिकॉर्ड थे 200 भी फास्टेस्ट, अगर आप 35 ओवर में 280 से ज्यादा रन स्कोर करते हैं टेस्ट मैच में, तो आपने वो मैच जो ड्रॉ लग रहा था उसको मैच आपने बिल्कुल सेट कर दिया कि प्रेशर एक बार फिर बांग्लादेश के ऊपर चला गया। उसके बाद जिस अंदाज से गेंदबाजी की, और वो भी चौथी बार इस सीरीज में ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की विकेटें एकदम से ढेर हो गई क्योंकि कोई पार्टनरशिप नहीं लगी लंबी।
राकेश, भारत की
के लिए इजी हो गया।
राकेश, भारत की जो जीत हुई है, इसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, संक्षेप में बताइए।
देखिए, भारत अभी नंबर 1 पे है 11 मैच खेलने के बाद। उनका जो परसेंटेज पॉइंट है वो लगभग 75 है और जो दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया उसका 62.5 है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितने आगे हैं। 1 मैच कम खेले हैं फिर भी 12 पॉइंट आगे चल रहे हैं परसेंटेज पॉइंट।
धन्यवाद राकेश।
लगभग पक्का हो गया हमारा।
निशानेबाजी में पेरू के लीमा में जारी 3 दिवसीय जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने पुरुषों की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने का 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में ये दूसरा स्वर्ण पदक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलिंस के साथ वार्ता की। कहा, भारत जैव ईंधन, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों में जमैका के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के 3रे और अंतिम चरण का मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 44% से अधिक मतदान दर्ज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। इसराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले शुरू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।